તારીખ 13/8/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 151
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત 449 ચાલતા હૈ 8 પોસ્ટકાર્ડ મેં છે ચોથા પોસ્ટકાર્ડ સુવિધા હૈ લોકસંગના ઉપસંગના પર અસત્સંગ હૈ જીવ કો અપને સ્વરૂપ કો વિચાર કરને મેં યા અપને સ્વરૂપ કો કા નિશ્ચય કરને મેં પહેચાન કરને મેં ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરાતા હૈ ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન હોને સે કલ્પના હો જાતી હૈ ઓર એસે કારણ મેં ઉસ કારણ આત્મઘાતક સમજના ચાહીએ ઉન કારણો કો આત્મઘાતક સમજના ચાહીએ બહુત અનિષ્ટ કરને વાલા હૈ ઉન કારણો સે ઉદાસીન હોના ઉસકે સિવા નિસત્વ એસી લોક સંબંધી જપ તપ આદિ ક્રિયા જો લોક મેં પ્રચલિત હૈ પ્રસિદ્ધ હૈ એસી જો જબ તપ ક્રિયા જપ તપ આદિ કી ક્રિયા હૈ જબ મેને માલા ફેરના ઓર તપ મેને ઉપવાસ આદિ વ્રત નિયમ લેના લોક સંબંધી કહો યા અપને અપને સંપ્રદાય સંબંધી કહો એક હી બાત હૈ કૈસી હૈ ક્રિયા બિલકુલ નિસત્વ હૈ ઉસમેં કોઈ સત્વ નહીં હૈ આત્મા કા કલ્યાણ હોવે એસા કોઈ સત્વ ઇસમેં નહીં હૈ ક્યોંકિ જીવ એસી ક્રિયાએં લોક સંજ્ઞા સે કરતા હૈ બહુભાગ તો ઓર ઉપ સંજ્ઞાએ કરતા હૈ લોક સંજ્ઞાએ કરતા હૈ માને કે જહાં ભી લૌકિક માન મિલે ઉસ દૃષ્ટિકોણ સે વો કરતા હૈ કે તપશ્ચર્યા આદિ કરેંગે ઓર ઇનકે ફિર તપશ્ચર્યા કે બાદ ક્યા ઉસકો બનાતે ને રથયાત્રા નિકાલતે આપણે ગુજરાતીમાં ઉજવણું કહે છે હિન્દીમાં તો ક્યાં કહેતે હૈ સન્માન સમારોહ કરતે હૈ શોભાયાત્રા ઓર ઉસકો ખિલાને પિલાને કા બહુમાન ઇસકે પીછે એક લોક મેં પ્રસિદ્ધિ કે આપને ઇજ્જત બનાની અપના સ્થાન કુછ હોના એ જીવ કો ઘાતક હૈ કૈસે હૈ કૈસા હૈ જીવ કો ઘાતક હૈ ઇસકી અનુમોદના કરના કે નહીં કરના અનુમોદના મેને ક્યાં હમ તો નહીં કરતે લેકિન ક્યાં કરે સગે સંબંધી મેં તો સંપ્રદાય મેં સબ કરતે હૈ કોઈ જમાઈ હોતા હૈ કોઈ વિવાહ હોતા હૈ કોઈ બહેનોઈ હોતા હૈ ઓર ઉનકે સાથ સંબંધ બિગાડ ભી નહીં સકતે તો ઉસકે સાથ ऐसे सम्मान समारोह में अपना योगदान देना, उपस्थित रहना, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है? अनुमोदना है। ये क्या है? जहाँ भी व्यवहार झूठा हो, ग्रहित मिथ्यात्व का हो, इन व्यवहारों में हम भी शामिल हो जाए, हम भी इन व्यवहारों में अपनी उपस्थिति रखें, ये एक प्रकार की अनुमोदना है। करने कराने में तो दोष है, उतना ही दोष, और कभी इससे ज्यादा दोष तो अनुमोदना में आ जाता है, अनुमोदना में होता है। और अनुमोदना का दोष ऐसा छिपा हुआ दोष है कि उस दोष का जीव को ख्याल नहीं आता, समझ नहीं आती कि हम इस प्रकार का अनुमोदना का दोष करते हैं, वो ख्याल में नहीं आता। अभिनंदन समारोह में नहीं जाना, लेकिन इस कारण से भोजन समारंभ हो तो उसमें तो जाना कि नहीं जाना? क्यों जाना, सवाल ये है, जाना तो क्यों जाना? खाना पीना किस निमित्त से है? खाने पीने में तो दोष नहीं है, लेकिन हमको खाने पीने का मन हो तो, हमको ऐसा खाने पीने का मन होता हो तो क्या करें?
मन नहीं होता, ये लगता है कि खाने पीने में चले जाते हैं।
खाने पीने का मन क्यों नहीं होता है? खाने पीने का मन नहीं होता है क्या?
वहाँ जाके चले जाएं, वहाँ जाके अटेंडेंस दे दें, नहीं खाए पिए तो
क्या करें?
खाली अटेंडेंस दे रहे और नहीं खाए पिए तो?
खाली उपस्थिति रखें, खाना खाने पीना नहीं करें, क्या क्या जरूर है वहाँ उपस्थित, वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़े?
व्यवहार के हिसाब से चले जाते हैं, खाने पीने में अनुमोदना का दोष।
ऐसा किसने कहा? जाने में अनुमोदना का दोष कैसे नहीं होता?
जाने में तो हमारे अभिप्राय में तो वो बात है कि हम हमारा व्यवहार को निभाने जा रहे हैं।
हाँ, अभिप्राय वाली बात है वहाँ। ये बहुत अच्छा बहानाबाजी का एक इतना अच्छा मिल गया है, हैं? वो करते हैं लेकिन अभिप्राय कहाँ है हमारा? वाह, यहाँ से गड़बड़ फिर चालू होती है। हम तो अभिप्राय तो वितरकता का रखते हैं, हम तो अभिप्राय तो सही समझ का रखते हैं, फिर भी जाते हैं। ये सब गड़बड़ है, इसकी जगह पार्टी में जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व का अनुमोदन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लौकिक व्यवहार है।
घर पे कोई प्रसंग आ जाए तो क्या करे, कहाँ दे? और घर पे कोई प्रसंग आ जाए तो कहाँ दे?
घर पे प्रसंग आए तो घर वाले को एक दफे बोलना है, देखो हमारी मान्यता इसके विरुद्ध है और इसमें इस प्रकार का नुकसान है, इसलिए कहीं हमारी अनुपस्थिति आप देखो, या हमारी कहीं कोई ऐसा व्यवहार देखो कि जिसको आपको अनुकूल न हो, तो आप लोगों को कुछ होना चाहिए नहीं, इसमें क्या है? समझाने की कोशिश करें, नहीं समझे तो वो जाने। उनको बोलना कि हमारी अनुमोदना नहीं है, इस विषय में हम किसी का इंसल्ट नहीं करते। इंसल्ट करना एक बात है, अनुमोदना करना दूसरी बात है।
तो सामने वाला तो बोलेगा जब अनुमोदना नहीं करे तो वो इंसल्ट ही है।
ऐसा नहीं है, वास्तव में लेते हैं वो बात जरूर है, लेकिन हमारे अभिप्राय में तो ऐसा नहीं है। तो है क्या ऐसा तो नहीं है? तो हमको सोच समझ के अपने को बचाना है, अपने को बचाना है, हमारे परिणाम स्पष्ट होना चाहिए और हमारे परिणाम अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार दो तरीके का होता है, एक लौकिक व्यवहार और एक धार्मिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार के जगह निभाया जाता है, लेकिन धार्मिक व्यवहार में प्रधान की प्रधानता होने से मिथ्यात्व का प्रसंग आता है, इसलिए हमें धार्मिक व्यवहार में कहीं मिथ्यात्व के प्रसंग में अनुमोदना नहीं कर दे, वो बात हमें होनी चाहिए। नानी में अपन कह देना कि हमको ये नहीं चाहिए, मेहरबानी करके आप हमें नहीं भेजे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। लेकिन लानी क्या पर्सनल हम लेते हैं क्या? व्यक्तिगत लानी लेते हैं क्या? घर में दूसरे भी मेंबर तो होते हैं ना, उनके परिणाम हो जाने, अपना परिणाम को स्पष्ट कर दें, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि घर वाले तो कई सदस्य होते हैं, कोई चीज आती है मुफ्त में, हाँ तो सुहाती है, अच्छी लगती है, घर वाले लेंगे भी, लेकिन इनके परिणाम हो जाने। अगर घर में हम ही मुख्य हो या एक अकेले हो तो उसको हम लौटा सकते हैं, आसानी से लौटा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार का जो भी प्रसंग होता है ना इसमें तो गौंट कर देते हैं, पर धार्मिक इन प्रसंग में अनुमोदना का दोष करते हुए फंस जाते हैं।
ये तो गड़बड़ है हमारे,
हमें सोचते उसमें हम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है,
और
इधर का नुकसान जो गर्भित है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता
है। वही तो है कि यथार्थ समझ नहीं होने से अनेक प्रकार के गृहित मिथ्यात्व के दोष हो जाते हैं, पर ऐसे दोष हो जाते हैं फिर भी हमको पता नहीं होता है, फिर हम हमारे सन्मार्ग के प्रति आगे बढ़ते हैं उसमें रुकावट आती है, उसमें हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमको समस्या खड़ी होती है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम कितने दोष करते हैं वो हमको मालूम नहीं होता है। एक सामान्य बात ले लें कि हम इस मार्ग के क्रम को जानते हैं, थोड़ा बहुत हमारा प्रवेश भी होता है, कुछ वेदना भी आती है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ते, इसका क्या कारण? हमको पता नहीं रहता है कि हम किन किन परिणामों में रस लेते हैं। दूसरी बात छोड़ो, चलो खाने खाने पीने में रस नहीं आया, लेकिन तत्व चर्चा में भी अगर हमको अप्रयोजनभूत विषय में रस आता है तो हमको कहाँ नुकसान होता है, आगे बढ़ने में हमको ये रुकावट आ जाती है, इसका ख्याल हमें नहीं रहता है। हम तो ये समझते हैं कि हमने तो स्वाध्याय किया, हमने तो तत्व चर्चा किया, लेकिन हमारे मार्ग में आड़े कौन बात आती है वो बात हमारी समझ में नहीं आती है कि हम कैसे कैसे परिणाम में कहाँ रस लेते हैं, वो बात है। जैसे कि अभी अभी थोड़ा हंसने का काम हो गया, हंसने में तो मजा ही आती है ना, हाँ खुशी होती है, लेकिन हमारा रस कितना गया, क्यों गया? हम हमारे काम में लगे हैं उसमें से कहीं खिसके तो नहीं, या खिसके तो कितने खिसके, क्या हुआ, क्या हमारी इतनी दरकार इतनी नजर पहनी रहती है क्या? वो सब बातें मार्ग प्रति चढ़ने वाले को तो बहुत जरूरी रहती है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे छोटे दोस्त को लाइटली लेकर के हम आगे बढ़ने से ही रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कहते हैं कि ऐसी क्रिया में मोक्ष तो साक्षात मोक्ष तो नहीं है, लेकिन परंपरागत आगे जाकर के मोक्ष हो जाएगा ऐसा भी नहीं है कि करते करते कभी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ऐसी निसत्व आदि क्रिया, निसत्व क्रियाएं न करनी है न करानी है, न इसकी अनुमोदना हमारे से होनी चाहिए। धर्म का संस्कार और धर्म की नीति नियम, उसमें चुस्तता होनी जरूरी है। अगर इसकी पकड़ अच्छी तरह नहीं रही तो लौकिक प्रवाह में कितने बह जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। साक्षात मोक्ष नहीं है, परंपरागत मोक्ष नहीं है, ऐसा माने बिना जीव को अपना स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहना है। ऐसा माने बिना अपना स्वरूप की पहचान होना ये बहुत दुर्लभ हो जाएगा। और एक बात लिखते हैं यहाँ पर कि निसत्व ऐसे असत शास्त्र और असद्गुरु जो आत्मस्वरूप को आवरण के मुख्य कारण है, क्या है कि जैसे असत शास्त्र है, असत शास्त्र किसको कहते हैं, ज्ञानी के लिखे हुए शास्त्र है, भावलिंगी मुनि और आचार्यों के लिखे हुए शास्त्र सत्शास्त्र है, इसके सिवा अज्ञानी या अज्ञानी गुरु के लिखे हुए सभी शास्त्र असत शास्त्र है। और ज्ञानी ही गुरु हो सकते हैं, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं हो सकते हैं। वो नहीं हो सकते उतना तो ठीक, फिर भी उसका सेवन करें, हम असद्गुरु को अनुसरण करें, असत शास्त्र को पढ़ें, स्वाध्याय करें, और असद्गुरु को अनुसरण करें, उसका बहुमान करें, उसका आदर सत्कार करें, तो यह आत्मस्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है। हमारे स्वरूप पर हम आवरण करते हैं, आवरण चढ़ाते हैं, एक गार्ड पर्दे लगा देता है, पर्दा दीवार खड़ी कर देते हैं कि जिस कारण से हमें आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। लगता है मामूली, क्योंकि ये काम सब सामूहिक कभी होता है, ज्ञानी अज्ञानी कौन जाने, अपने को तो मान सम्मान करना चाहिए, कम से कम त्यागी तो है, हमारे संप्रदाय के तो है, तो ऐसे करने में अगर हम ऐसे समाज से अलग नहीं पड़ते हैं और अलग नहीं पड़ने के कारण से ऐसे करते हैं, हमारी अनुमोदना पहुंचती है और हमारे आत्मस्वरूप को आवरण आता है। फिर हम विचार करते हैं कि हम सच्चे शास्त्र का भी अभ्यास करते हैं, ज्ञान अभ्यास करते हैं, ज्ञानी का भी हम संगत करते हैं, फिर हमको क्यों लाभ नहीं होता है? हम नुकसान का व्यापार तो करते रहे, और लाभ की अपेक्षा भी रखते रहें, ये अपेक्षा कहाँ से सफल होगी? ये बात सफल होने वाली नहीं है। यहाँ तो कृपालु देव ने थोड़ा कठोर शब्द में इसका प्रतिपादन किया है कि आत्मस्वरूप के आवरण के कारण तो है, तदुपरांत उसको साक्षात आत्मघाती जानना, क्या जानना, अनिष्ट है, घातक है और इसलिए दुष्ट है। क्या अनिष्ट है, घातक है, इसलिए वो जो घात करता है वो दुष्ट है, ऐसा साक्षात जाने बिना जीव को जीव का स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, अपने स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है। ऐसा लिखे तो विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? कृपालु देव का विरोध हुआ, उनके जमाने में साधु संप्रदाय ने विरोध किया। क्यों किया? कि आत्मघाती बता देते हैं, अज्ञानी गुरु को क्या बताते हैं, आत्मघाती बताया, खून करने वाला, घातक मैंने खून करने वाला। इस देश में कोई खून करता है क्या किसी का? हम तो एक एक जीव की दया का पालन करते हैं, बात तो वो होती है वहां, साधु होते हैं दया का पालन करते कि नहीं करते? कि करते हैं। लेकिन जो अज्ञान पूर्वक का जो उपदेश है उससे अच्छे अच्छे मनुष्य के का घात हो जाता है। कैसे घात होता है? उसका ज्ञान और आनंद प्राण का घात हो जाता है, घात हो जाता है। मानना थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन बात ऐसी ही है। लौकिक में एक दृष्टांत देने हैं कि जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठा है और इसकी हम दवाई करें तो क्या होगा? वास्तव में डॉक्टर नहीं है, धोखाबाज है, डॉक्टर का बोर्ड लगाया है और इसकी हम ट्रीटमेंट करें तो क्या होगा? कभी कभी क्या होता है, हार्ड वैद्य जैसे वैद्य होते हैं ना सब, उसको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर का कोई सर्टिफिकेट होता नहीं, पर कभी इनके पास कोई जाता है कि ऐसा ऐसा दर्द होता है तो तोड़ मरोड़ करके दर्द बढ़ा भी देता है, तो उनको तो पता नहीं है कि ये दर्द किस प्रकार और कैसे मिटता है। वो भी कुछ अलग अलग प्रयोग करते करते कोई ऐसी गड़बड़ करता है कि उसका दर्द बढ़ जाता है, क्या मिटने का था वो मिटने का असंभव हो गया, होता है कि नहीं होता है? ऐसे जो मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, मोक्ष मार्ग से अनजाने हैं, ऐसे लोगों को सदगुरु मान करके फिर इसकी ट्रीटमेंट जो लेता है तो गौ भ्रमण छूटा छूटने के बजाय ब्रह्म भ्रमण को बढ़ा लेता है। इसलिए उनको साक्षात आत्मघाती बताए हैं कि उसको आत्मघाती जाने बिना आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होगा। तो ऐसी बातें जो कही तो कृपालु देव का भी विरोध हो गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं अरे हमको ऐसे बताते हैं, हमारे लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो इनका वो चित्र विचित्र ढंग से विरोध करेंगे, अनेक प्रकार की अफवाहें फैलेंगी, अनेक प्रकार के अवर्णवाद करेंगे और सत्पुरुष का ज्ञानी पुरुष का भी विरोध हो जाएगा। और इनको फिर भी मान करना, ये ज्ञानी पुरुष का विरोध करने की अनुमोदना हो जाएगी, विरोधों को बढ़ावा मिल जाएगा, वो मानेंगे कि हमारे सपोर्ट में इतने लोग आते हैं, हमको मानने वाले इतने आते हैं, हमको सुनने वाले इतने आते हैं, इसलिए न सुनने को बैठना न ऐसे कोई सामूहिक प्रसंग में अपने को जाना आना नहीं होना चाहिए। बहुत तो क्या होगा कि हमारे इस माहौल में जो इज्जत है वो इज्जत चली जाएगी। ठीक है, हमें ऐसी इज्जत चाहिए भी नहीं। हमारी आत्मा जो त्रिलोक के पूज्य पद है, त्रिलोक में भी वो पूज्य पद है। अब इतने उच्च पद में हमारी आत्मा है, फिर लौकिक इज्जत वाले निज पद में राजी हो जाए, ये बात कहां तक ठीक है? उच्च पद वाले को निज पद मान सम्मान का क्या क्या पद है? कोई पद नहीं है। लौकिक मान सम्मान जाने बिना जीव को जीव का स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। बात क्या हो जाएगा? अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा काम हमारा। और हमारी कठिनाई, हमारे स्वरूप प्राप्ति की कठिनाई हमारी और बढ़ जाएगी। और ठीक इसी कारण से ज्ञानी पुरुष के प्रकट आत्मस्वरूप को कहने वाले ऐसे वचन भी उन कारणों के लिहाज जीव को स्वरूप का विचार करने में बलवान होते नहीं। विचार करने में बलवान होना, विचार होना और विचार में बलवान बना होना दोनों अलग अलग बात है। बात तो सही है, लेकिन हमको बल क्यों नहीं आता है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रगट आत्मस्वरूप को कहने वाले वचन मिलते हैं सत्पुरुष के, फिर भी हमको आत्मस्वरूप को पहचानने में या अनुभव करने में बल क्यों नहीं मिलता है कि हम कई प्रकार के विरुद्ध कारण का भी सेवन करते रहते हैं, यही कारण है। ज्ञानी पुरुष के प्रकट आत्मस्वरूप को कहने वाले ऐसे वचन भी उन कारणों से जीव को स्वरूप का विचार करने में बलवान नहीं होता, और जब बलवान नहीं होता तो जीव का स्वरूप का विचार या स्वरूप रस अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं होगा। और रस नहीं आएगा तो विचार विचार में बेकार रह जाएगा और हमारा आयुष निकल जाएगा। अब ऐसा निश्चय करना योग्य है, अब ऐसा निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है, प्रकट है, वह पुरुष के बिना दूसरा कोई यह आत्मस्वरूप यथार्थ कहने योग्य नहीं है। ये बात का हमको अच्छी तरह निश्चय होना चाहिए कि जिसको आत्मस्वरूप को जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं किया है, जिसने आत्मस्वरूप को जाना नहीं है, जिसको आत्मस्वरूप प्रकट नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष के बिना कोई आत्मस्वरूप को बता सकते नहीं, कह सकते नहीं यथार्थ रूप से। ऐसा निश्चय हुए बिना हम किसी को भी अनुसरण करने लग जाएंगे, ये निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए। वरना आत्मस्वरूप में कल्पना करके कोई बात करेंगे, हमारे दिमाग में हमारी श्रद्धा में वो बात फिट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई विधि नहीं जानते हैं, पर विधि बता देते कि आप ऐसे करते रहो और हम करने लग जाएं, क्या होगा कि सही विधि पर आना मुश्किल हो जाएगा। जब हम आड़े रास्ते चढ़ जाते हैं तो उस रास्ते से वापस तो आना पड़ेगा ना, और तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए देर सवेर होवे उसकी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो भी होना जो भी करना वो यथार्थ करना है। कम से कम इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और यह पुरुष से आत्मा को जाने बिना दूसरा कोई कल्याण का उपाय नहीं है। बहुत स्पष्ट बात लिखा है, अनुभवी ज्ञानी पुरुष जिनको अपना आत्मस्वरूप भीतर में प्रकट हुआ है, प्रकट वर्तता है और आत्मभान में जो है, उसके सिवा दूसरा किसी भी पुरुष से आत्मा को जानना ऐसे पुरुष से आत्मा जाने बिना दूसरा कोई कल्याण का उपाय नहीं है। कुछ भी कर ले, बिना आत्मज्ञान तो संसार कटने वाला, परिभ्रमण कटने वाला है ही नहीं। पर आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञानी पुरुष बिना किसी और जगह से प्राप्त हो जाए, वो बात तीन काल में संभव नहीं है। ऐसे पुरुष से, ऐसे ज्ञानी पुरुष से आत्मा जाने बिना, आत्मा जाना है ऐसी कल्पना मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करनी चाहिए, त्याग करने योग्य है। ज्ञानी पुरुष से आत्मा जाने बिना, अन्य जगह से सुन करके, पढ़ करके, किताब पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके हम भी आत्मा को जानते हैं, ये कल्पना मात्र है, और ये कल्पना का त्याग मुमुक्षु जीव को कर देना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान लिया के नहीं लिया वो बात है, और जगह से मिल सकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो माल नहीं है वो बेचेगा कहाँ से। आप वेजिटेबल मार्केट में जाओ और कहो कि हमको तो हीरे का हार चाहिए, हीरे का नेकलेस चाहिए, तो वहाँ तो मूली भाजी मिलता है, वहाँ कोई नेकलेस फेकलेस मिलता नहीं है, कहाँ से मिलेगा वो। जिसके दुकान में, घर में जो चीज नहीं है वो देगा कहाँ से, सीधी सादी बात है। जब ये वास्तविक परिस्थिति है तो मुमुक्षु जीव को ऐसे ज्ञानी पुरुष के बिना आत्मा मैंने जाना है ये कल्पना में कभी नहीं आना चाहिए। सर्वथा उसका त्याग कर देना, ऐसी कल्पना का सर्वथा त्याग कर देना।
प्रत्यक्ष
हाँ वो तो है, कागज के दिए से भी दिया नहीं जलता। कागज पर पेंट कर दे बहुत अच्छा, बढ़िया से बढ़िया दिया को पेंट करें, इससे कोई दिया जलेगा क्या? इसलिए शास्त्र से भी दिया नहीं प्रकट होता, वो कागज का दिया है। तो फिर और जगह से होता है, वो बात तो विचार करने लायक भी नहीं है। जुगनू होते कि नहीं होते, अपने आज्ञा जीवड़ा के जैसे जीव होते हैं ना, आज्ञा, इससे कोई आग जलती है क्या? ठंड के दिनों में हमें आग चाहिए, अग्नि चाहिए ना, तो उसके लिए तो अग्नि जलाने के लिए दिया या अग्नि चाहिए। अग्नि के लिए तो अग्नि चाहिए, बिना अग्नि कोई बात हो सकती, गर्म पानी से भी नहीं होगा, जलेगा नहीं कोई, गर्म पानी से भी आग नहीं लग सकती। और कागज पे अग्नि का चित्र हो तो वो भी काम में आने वाला नहीं है, अग्नि ही चाहिए, बस सीधी सादी बात है। यह आत्मारूप पुरुष का सत्संग की निरंतर कामना रख करके, अन्य कल्पना का त्याग करके, ज्ञानी पुरुष को क्या बोला, आत्मा रूप पुरुष बोला है। क्या शब्द संयोजन है, सत्पुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, आत्मा रूप पुरुष कहते हैं उसको, तो आत्मा रूप हुए हैं। उसका रूप क्या है कि आत्मा ही जिसका रूप है, और कोई इसका रूप नहीं है। ऐसे पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रखना, इसका सत्संग निरंतर मिलता रहे यही भावना रखना, और यही भावना के साथ उदासीन रूप से लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी परिणाम से छूट सके, ऐसे रीति से व्यवहार करना। देखो ये प्रश्न आता है हम लोगों को कि हमको व्यवहार कैसे करना, फिर ग्रस्त है और ग्रस्त होने के कारण से कई प्रकार की झंझटें भी हैं हमको, अब हमको हमारा व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मा रूप ऐसे ज्ञानी पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रख करके एक दफे तो उदासीन रहना, हाँ उदासीन रहना। जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिलती है तो हमारी उदासीनता आनी चाहिए। हमको आत्मा चाहिए या सत्पुरुष चाहिए, मिलता नहीं है तो हम और जगह रस लेने लग जाते हैं, इसका मतलब हमें चाहिए नहीं। अगर हमें वास्तविक रूप से चाहिए तो हमको कहीं अप्राप्ति में रस आएगा नहीं। ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्पष्ट है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा रूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रख करके अगर सत्संग की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं है तो उदासीन रूप से लोक धर्म संबंधी जो भी लौकिक व्यवहार है और कर्म संबंधी मैंने पूर्व प्रारब्ध अनुसार जो करना पड़ता है, प्रारब्ध के कारण से कई प्रसंग खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार से व्यवहार करना के जिस प्रकार से अंततः परिणाम मैंने अंततः छूट सके, उसका फल ऐसा है कि हम उस व्यवहार से भी छूट जाएं, यानी उसको कम करते जाइए, उसे उदासीन रूप से व्यवहार करते हुए भी उसको कम करते जाइए। अगर हम चाहते हैं तो कर सकते भी है, जहां चाह है वहां राह है, रास्ता निकालेंगे हम। दूसरे कठिन कठिन कार्य में भी हम रास्ता निकालते के नहीं निकालते, ये तो हमारे भीतर के परिणाम है। हम चाहे जैसा कर सकते हैं लेकिन हमको लौकिक भाव आड़े आता हो, कुटुंब प्रतिबंध आड़े आता हो, ऐसे कई प्रकार के शिथिलता के कारण से हम अटकते हो, तो क्या इसका रास्ता नहीं है, इसका रास्ता है। हमको ऐसा ही करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय कम से कम चाहिए। परिणाम में निश्चय करना उतना तो कार्य है, न कुछ लेना है न कुछ देना भी है। निश्चय करने में क्या आपत्ति है, वो भी हमारे आत्मकल्याण के लिए निश्चय करना है। हमारी भलाई के लिए हम निश्चय करें, उसमें हमको पसीना आता है, क्या बात है।
जीव को अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं है इसलिए ऐसा कहते
हैं।
जीव को अपने आप पे विश्वास नहीं आता इसलिए ऐसा कहते
हैं। हाँ, जीव को अपने आप में विश्वास नहीं है कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है। हम अन्यत्र आधार बुद्धि से प्रवृत्ति करते हैं, यही कारण है कि हमारे आधार बुद्धि से अन्य जगह, अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, अन्य व्यक्ति, इसकी आधार बुद्धि हमें परतंत्र कराती है और हमारे में दीनता पामरता पैदा करती है। न चालता करवो जइए अने ते पण प्रारब्ध वशात। નિષ્ફળ બુદ્ધિથી એવો જે વ્યવહાર તેને યોગ્ય વ્યવહાર માનજો, ન ચાલતા કરવો પડે, ઇસમે ચલેગા નહીં। બાત છોટી સી હૈ, ઉતના વ્યવહાર નહીં કરેંગે તો બડી બાત ખડી હો જાયેગી। તો ઉસકો અટકાને કે લિયે નહીં ચલેગા એસા કરકે વ્યવહાર કરના, ઓર એસા કોઈ પ્રારબ્ધ હમારે પે આ ગયા હૈ, પૂર્વ કર્મ કા ઉદય આ ગયા હૈ। तो निष्प्रभ बुद्धि से या उदासीन परिणाम से जो भी व्यवहार होता है ये योग्य व्यवहार होता है, ये पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये योग्य व्यवहार है, ऐसा लेना ठीक है। नहीं, दिया तो ज्ञानी पुरुष के बिना नहीं जलता, वही दिया है, अज्ञानी से दिया नहीं जलता। कुछ प्रेरणा ऊपर की भूमिका वालों से मिलती है, उतनी सी बात है, दिया नहीं जलता। क्योंकि दिया है वो दिया है, दिया नहीं है वो दिया नहीं है, ये बात। ये इसलिए ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है कि सम्यक ज्ञान होने में ज्ञानी ही निमित्त है, अज्ञानी किसी प्रकार से निमित्त नहीं है, ज्ञानी ही निमित्त होते हैं। तो एक मर्यादा है इस विषय के, तीनों काल में ये मर्यादा है, क्योंकि आखिर में जिसको आत्मस्वरूप प्रकट नहीं है तो दूसरे को आत्मस्वरूप कैसे प्रकट हो सकता है। और 249 में तो ये कहा कि ये भूतकाल के ज्ञानी भी नहीं चले इसमें, क्योंकि वर्तमान में दिया जलाना है तो वर्तमान में दिया चाहिए। भूतकाल का दिया अभी वर्तमान में नया दिया को नहीं प्रकट कर सकते। दिया के नहीं लिया है 249 स्पष्ट लिया है वो।
व्यवहार में तो देना लेना है, यहाँ पे भी देना लेना है, व्यवहार में तो देना लेना है, यहाँ पर भी देना लेना है।
यहाँ पर कैसे लेना देना
आप बताए ना कि दिया नहीं है,
यहाँ दिया की बात चलती है, दिया से दिया जलाने की बात, और कोई बात नहीं। क्या कहते हैं कि यह आत्मारूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रख करके उदासीन भाव से लोक धर्म संबंधी यानी लौकिक व्यवहार और कर्म संबंधी में यानी प्रारब्ध वशात जो करने पड़ते हैं ऐसे कर्म कार्य, परिणाम मैंने अंततः उससे भी छुटकारा हमारा हो जाए ऐसी रीति से व्यवहार करना। व्यवहार करने में ये हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा हेतु होना चाहिए कि हमको इसको भी त्याग करना है, इसको भी छोड़ना है। आज ये जो करते हैं प्रारब्धवशात वो आगे हमको करना नहीं है, तो उदासीनपने से ये व्यवहार करना। इसको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन और देते हैं कि जिस व्यवहार कार्य में कोई भी प्रसंग हो अपनी महत्ता आदि की इच्छा होती हो यह व्यवहार करना यथा योग्य नहीं है, उसको छोड़ देना। जिस व्यवहार करने में हमारे महत्ता की इच्छा रहती हो कि चलो यहाँ हमारा कुछ महत्व है इसलिए हमें जाना चाहिए, वो व्यवहार निभाना नहीं। हाथ जोड़ के कह देना कि देखिए हमको नुकसान होता है इसलिए मेहरबानी करके हमको छोड़ दीजिए, ऐसे मामलों में ऐसे प्रसंग में हम कोई भी हमारा योगदान दे सकेंगे नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं रह सकता, मेहरबानी करके हमको छोड़ देना, हम हमारे आत्मा का घातक बनना चाहते हैं नहीं है। पर सीधी साधी बात है, अगर ऐसा गुण प्रत्येगा, ये गुण है, अगर ऐसा गुण हम प्रकट कर सकते हैं कि कहीं भी आत्मघातक परिस्थिति में हम करने कराने अनुमोदने में नहीं आते हैं, ऐसा गुण अगर हमारे में प्रकट होता है तो उसको पहचान करके इसका बहुमान करने वाले भी जगत संसार में जीव होते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह से वो निकम्मा हो जाता है, ऐसा नहीं है, फिर भी वो भी उनको चाहिए नहीं, ये इसके विशेष महत्ता है। संसार में तो जहाँ भी मान सम्मान मिलता है, कोई भी सत्कार्य करो अच्छा कार्य करो मान सम्मान मिलेगा, तो जीव को चाह रहती है कि चलो यहाँ तो आत्मकल्याण के मार्ग में आत्मगुण प्रकट होने वाले को मान सम्मान मिले वो उसको चाहिए भी नहीं, वो दूर भागेगा इससे। जहाँ भी कोई आगे करेगा तो वो दूर भागने का प्रयास करेगा, हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। ऐसी वृत्ति हो जाती है आत्मार्थी जीव के। क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि प्राय बनती है ऐसी चीज है कि जिस व्यवहार कार्य में जीव को अपनी महत्ता आदि की इच्छा हो कि ऐसा करने से अपना महत्व बढ़ेगा, यह व्यवहार करना यथा योग्य नहीं है, यह व्यवहार तो करना ही नहीं, हमको इस कारण से व्यवहार करना नहीं है। ऐसी अंतर जागृति आए बिना या हुए बिना आत्मकल्याण में ये सदव्यवहार भी बाधा करता है। बाह्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, रूढ़ी के दृष्टि से व्यवहार अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि है तो बुरा ही है। अगर हम कहें हमारी महत्ता की इच्छा रहती हो तो, और महत्ता की इच्छा नहीं हो इसके लिए हमारे पास कौन सा साधन है? लोग तो महत्ता देंगे। अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी महत्ता करने वाले जीव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हमारी महत्ता की इच्छा नहीं रहे इसलिए हमारे पास कौन सी समझ है, कौन सा ज्ञान है कि जिससे हम बच सके? अगर हम नहीं बचते हैं तो यही बात हमारे लिए आत्मघाती हो जाएगी, नियम से हो जाएगी, ये बात बनने वाली है। सारांश यह है कि हमको कोई लोक धर्म में भी खराब कार्य तो नहीं करना है, लेकिन अच्छा कार्य करने भी हमको सावधानी रहनी चाहिए। अगर हमारी सावधानी नहीं है तो हम कहाँ फंसेंगे हमको पता नहीं लगेगा। और आत्मकल्याण का हेतुभूत ऐसा जो मनुष्य भाव है, मनुष्य भाव क्या है? जन्म मरण मिटाने का हेतुभूत है, आत्मकल्याण का हेतुभूत है। ऐसा मनुष्य भाव दूसरे दूसरे कार्य में पूरा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बात मुमुक्षु मुमुक्षु के बीच में विनम्रता का व्यवहार रहना चाहिए। जितना विनम्रता का व्यवहार रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। मैं भी कुछ हूँ तो गड़बड़ हुए बिना रहेगी नहीं, गड़बड़ होगा ही होगा। कृपालु देव ने तो इस विषय में बहुत बातें की हैं। भक्ति का प्रकरण चला था 4-5 दिन के पहले। मुमुक्षु है वो क्या है कि ज्ञानी की भक्ति करता है, और जो ज्ञानी की भक्ति करता है उसकी भक्ति ज्ञानी करते हैं तो मुमुक्षु को सिखाने की जरूरत है क्या? 217 में आया कि नहीं आया कि ज्ञानी प्रति का इन लोगों का दासत्व हमारा इन लोगों के प्रति दासत्व होने का कारण है? कितनी विनम्रता है। जब ज्ञानी की इतनी विनम्रता है तो मुमुक्षु को क्या सिखाने की जरूरत पड़ती है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो उसका तो विशेष रूप से विनम्रता का व्यवहार होना ही चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार के व्यवहार में अपनी महत्ता बढ़ाने का कोई भी परिणाम हो या अभिप्राय हो, अभिप्राय तो खतरनाक है ही, लेकिन अभिप्राय विरुद्ध का परिणाम हो तो भी ये जहर खाने की बात है, ऐसा हमारी समझ में होना चाहिए। हमको जहर नहीं खाना है, हमको ऐसा जहर कभी नहीं खाना है, ये बात हमारी समझ में होगी तो हम बच सकेंगे, वरना बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने से इसकी महत्ता तो दूसरों लोगों से होगी ही होगी। अब हमको इसका रस नहीं चढ़े, ये बात सम्यक मार्ग के अलावा और कई जगह है ही नहीं। एक गुण प्राप्त करने के पीछे दूसरा बड़ा अवगुण पैदा हो जाता है, उसका ख्याल नहीं रहता है। एक जिनेन्द्र देव का सम्यक मार्ग ऐसा है कि जिसमें जो गुण प्रकट होते हैं वो सम्यक प्रकार से ऐसे होते हैं कि कभी अवगुण का इसमें कोई आगे पीछे कोई प्रकार आता नहीं है। वरना त्याग करे तो त्याग का मान, दान करे तो दान का मान, व्रत नियम करे तो इसका मान, भक्ति करे तो इसका मान, शास्त्र पढ़े तो ज्ञान का मान, मान करने में तो ये मनुष्य पर्याय में दूसरा जरा भी देर लगती नहीं है। अरे नम्रता का मान हो जाएगा, सरलता की मान क्या करो। हम तो बहुत नम्र रहते हैं, हमको तो नम्रता आती है। अरे क्या करते हो, नम्रता भी कोई दिखाने की, दिखाव करने की, आडंबर की चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक रखें, पांच पुस्तक हुआ, छठा पुस्तक हुआ।